खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद कुल्ली करना, फिर खड़े होकर पानी पीना पसंदीदा नहीं है। इजाजत है इसकी, ये कोई हराम बात नहीं है, लेकिन पसंदीदा नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी की एक रिवायत है, आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि मैदा बदन का हौज है, जैसे हौज होता है ना, बाहर पानी जमा करते हैं, जबकि रगें हर तरफ से इसकी तरफ आती हैं। जब मैदा दुरुस्त होगा तो तंदुरुस्ती लेकर वापस आती हैं, और मैदा बीमार होता है तो रगें बीमारी लेकर वापस आती हैं। अल्लाह के नबी को कौन ये बातें बताता था, कभी आपने सोचा? और ये मिश्कात में रिवायत है 4566 नंबर की, तो मैदे के बर्तन को साफ रखें। इधर से ही तो हर चीज आती है। अब एक बड़ा क्रिटिकल जुमला, जुमला नहीं बल्कि एक टॉपिक छोटा सा, कि आज सेहत की नेमत को और अपनी नौजवान नस्ल की गफलत को देखें तो क्या समझ आता है, आज हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया? शायद आप लोगों का इतना ना बिगड़ा हो, लेकिन अमूमन इंसान जब जरा से चार पैसे घर में आ जाते हैं तो स्टाइल बदलता है। क्या है? नंबर एक, खाने पीने सोने जागने की रूटीन खराब है। तवातुर से बाजार से खाने ला रहे हैं, है कि नहीं? यानी हमारा डिनर कितने बजे होता है? आप में से सभी बोलते हैं एकदम कि आप डिनर कह लें या रात का खाना कितने बजे खाते हैं, बोलें शाबाश। 8 बजे से 9, 12 बजे, हाँ? आप देखिए कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो मगरिब के बाद, यानी अब नमाजें तो दिन छोटे बड़े होते ही है ना, 7-8 बजे चाय पी रहे होते हैं अभी, तो मैं सोचती हूँ कि ये डिनर होगा, कहते हैं ना ये तो शाम की चाय है, तो डिनर उनका 10, 11, 12 बजे होता है। आप कहते हैं कि वेस्ट में खाने का क्या वक्त है? आपको अगर कोई बुलाए तो वो लंच नहीं होगा, वो डिनर होगा 4 बजे। 4 बजे के बाद गोरे खाना नहीं खाते, और उन्होंने कोई हमारी तरह फिर उसमें पुलाव जरदे भी नहीं खाने होते, वो ठंडा ही खाना जो बर्गर वगैरह सैंडविच बना के खा लेते हैं। खाना खाने की रूटीन आज हमारी बदली हुई है। सुबह चूंकि नाश्ते का टाइम ही स्किप हो गया ना, आप फजर के बाद नाश्ता करें, हाँ जरा, तो देखिए आपको कैसी कड़क भूख लगती है 12 बजे, और 12 बजे अगर आपने हल्का सा खाना खा लिया, 4-5 बजे आपको बिल्कुल भूख लगेगी, फिर छोड़ दीजिए। यानी ये जो मिड नाइट स्नैक्स हैं और ये मिड नाइट डील्स हैं, पिज्जे की एक डील, उनके जो बिकने उन्होंने फेंकने थे, तो वो आपको कहते हैं रात 1 बजे आओ, बाय वन गेट टू ले जाओ, उसके इंतजार में लोग बैठे रहते हैं, गलत बात है। सोना जागना हमारा कैसा है, हम सोच सकते हैं? हमारे खाने पीने के साथ सोना जागना बदला हुआ है कि नहीं बदला? यकीन करें हमारे लोग नमाज के लिए नहीं सुबह उठते। अब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बाहर का खाना, होटलिंग या कैटर्ड फूड, हर मौके पे, शादियों पे, दावतों में, दरसों में, हर जगह आ रहा है। आप खाना जो पकाते हैं, आपको पता है कि एक तो खाने में डाली हुई चीजें हैं ना, आप माँ हैं, जहर बीवी हैं, आप बहू हैं, आप कभी भी कोई नुकसान की चीज सिर्फ इसलिए डालेंगी कि खाने का रंग अच्छा लगे? नहीं डालेंगी ना, क्योंकि आपको यह है कि वो नुकसानदेह चीज होगी। टेस्ट जरा कम भी हो जाए तो इस ओके, लेकिन जब बाहर के खाने जिनको कई घंटे रखना है, उन्होंने उसमें रंग भी डाले होंगे, उसमें न जाने क्या कुछ डाला होगा, फिर क्रीमें और उसके अंदर हैवी चीजें डालना कि सिर्फ टेस्ट बने, तो ये चीजें आपकी बॉडी को नुकसान देती है। आज हमारी यूथ अक्सर बाहर के ये सबवे सैंडविचेस और ऐसी चीजों की यूज टू, उसमें इतनी मायनीज, उसमें इतना बटर, उसमें क्या कुछ है, और ये तो सब साइड पे कर दें। एक बात याद रखिएगा, पकाने वाले की भी एक तासीर होती है। माँ के हाथ का देसी घी का पराठा भी बंदे को उतना मोटा नहीं करता, जो पता नहीं नेल पॉलिश लगे और बेवजू लोगों के हाथ के बर्गर आपको मोटा कर दें। तासीर होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। आप देखिए जो प्यार से पकाता है ना, उसके खाने में टेस्ट होता है, उसकी तासीर होती है। हमारे असलाफ थे, वक्त इतना नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि ये खाना किसने पकाया है? यदि इमामों में से एक इमाम किसी दूसरे के गए, इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि वो जो घर वाले थे वो, उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि दीन के बाद बंदा खाता नहीं, ये पता नहीं क्या मुसीबत लोगों ने डाल दी कि दीनदार खाता नहीं, दीनदार पहनता नहीं, नहीं तो उसका तकवा खत्म हो जाएगा। बेवकूफी की बातें हमने आम कर दी है। अब लोग बड़ी तनकीद से देखते हैं, बड़े शक वाली नजरों से देखते हैं, मौलवी साहब मुर्गी खा रहे हैं, कितनी हमने लतीफे बना दिए हलवे के नाम पे, गलत बात है। याद रखिए कि यानी अल्लाह ने किसी चीज को मना तो नहीं किया, खैर उन्होंने कहा कि आज आपने बहुत खाना खाया, तो उन्होंने जो खुलासा दिया, उन्होंने कहा आज मैंने 6 माह के बाद ये खाना खाया, तुम ये बताओ खाना पकाया किसने था? तो उन्होंने कहा वो फुलां फुलां है, बड़ी अल्लाह से डरने वाली खातून है। उन्होंने कहा इसीलिए आज अल्लाह ने उसके हाथ का रिस्क मुझे ज्यादा खिलाया, क्योंकि उसकी नेकी की तासीर इस खाने में दिख रही थी। तो बहरहाल, तो फिर इसी तरह आप देखिए शराब, ड्रग्स, मंशियात, ये सारी चीजें हैं। तो इतनी बात को अगर मैं रैप अप कर दूं, आज से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जी, जलेबियां खानी सेहत का निशानी है कि नहीं? जलेबियों वालों से माजरत के साथ। घी में डूबे हुए समोसे, कोड़े तरते तरते। देखिए हमारा तो टेस्ट ही सारा ऑयली है, बची है। समोसे बगैर ऑयल के भी फ्राई हो सकते हैं, आपको पता? कैसे भला? अब एयर फ्रायर मंगवाएं 50,000 रुपए का, अब क्या होगा? लड़ाई तो होनी है ना, उन्हें कहना वो बाहर से बाजी आई हैं तो वो कह गई हैं तो अब हमें एयर फ्रायर चाहिए। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है अगर आपके पास हो तो। आप इतना सॉइल, हल्का सॉइल, जैसे वो ब्रश नहीं होते, नया एक ब्रश ले लें, टूथब्रश, ऑयल के अंदर ऐसे डाल के ना उसके ऊपर जिस तरह गार्निश करना होता है, इस तरह करके। अब आपके सोवन भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप फ्राई पैन रखें चूल्हे पे, आप उसके अंदर समोसे या जो भी ऐसे स्नैक्स हैं, रोल हैं, उसके ऊपर रख के उसको दम दे दें, थोड़ी देर बाद बदलें, कड़क बनेंगे। और अगर घर में ओवन है, डायरेक्ट ओवन में कच्चे समोसे डाल दें, क्रिस्प भी होंगे, हेल्दी भी होंगे। और क्या मुश्किल होता है पकाना? पिज्ज़ा कैसे बनाएं? पहली बात है पिज्ज़ा रोज ना बनाएं। देखिए वंस ऑफ ऑयल, अच्छा कोई हैवी मील खा लेना कोई बुरी बात नहीं, शर्त ये कि आप उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी हैबिट बदलिए प्लीज़। जब आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, यकीन करें उन लोगों को देखकर जो प्लेटों पे वो पहाड़ बना के चावलों के ऊपर बोटियों की वो हड्डियां के दरख्त उगाते हैं, अजीब सी फीलिंग आती है। बहुत कुछ है इसमें मेरे पास। आप कहते हैं एक पूरी प्लेट में आपका 70% सिर्फ आपके पास वहाँ वेजीज होनी चाहिए, वो सैलड है, वो कुछ भी है, फिर इतने परसेंट जो भी है। तो बात का खुलासा यह है कि जो खा रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। आज से नियत कीजिए बाहर का खाना नहीं खाना, मंगाना भी नहीं है। आप घर में एक चीज बना लें वो ज्यादा अच्छी है बाहर की 10 चीजों से, ठीक है? अब जितना वक्त भी रह गया बाकी हमारे पास आज का, उस पे हम दूसरी नेमत पे बात करते हैं, और वो क्या है? फराग। असेहत अवल फराग। फराग कहते हैं फराग़त को, फुर्सत के लम्हात, मुयस्सर आना, वक्त। टाइम इज लाइफ, लाइफ इज टाइम। आपका वक्त खत्म हो जाए ना तो आप एक पानी का घूंट और नहीं पी सकते। हत्ता इजा जाहदकुमुल मौत, आपके पास हजारों डॉलर्स पड़े हों, आप एक डॉलर से फायदा नहीं उठा सकते, तो वक्त की कदर कीजिए। ये कैसी आम नेमत है जो इंसानी मुआशरे में सबको यकसा मिली। आज का दिन अगर 12 घंटे का था तो हम सबके लिए 12 घंटे का था ना। अगर सर्दियों के और आगे जाएंगे तो दिन छोटे होंगे, तो सबके लिए छोटे होंगे ना। लेकिन कुछ लोग उससे बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ कुछ भी नहीं करते, कुछ थोड़ा करते हैं। आप देखिए कि वक्त की मिसाल तेज धूप में रखी हुई बर्फ की सिल की तरह। इमाम शाफी कहा करते थे कि मैंने जिंदगी की कीमत या सूरत असर की तफसीर मैंने एक बर्फ बेचने वाले से समझी, जो कह रहा था कि लोगों उस शख्स पे रहम करो जिसका सरमाया जिंदगी घुल रहा है, यानी मेरी बर्फ खरीद लो। तो आज मेरी आपकी जिंदगी कैसे घुल रही है, अगर हमें इसका अंदाजा हो जाए तो हम कभी वक्त जाया ना करें गीबत में, हम कभी वक्त जाया ना करें बेकारियात को देखने सुनने पढ़ने में। 3 घंटे का ड्रामा या फिल्म देखते हैं आप, और आपकी जिंदगी के वो 3 घंटों में अगर आप बैठकर सिर्फ इस्तग़फ़ार ही करें तो मेरा ख्याल है कि वो हजारों बार हो जाए दिल के साथ। तो फायदा उठा लें तो बेहतर होगा, वरना ये तो पिघल ही जाएगी। अल्लाह के नबी की हदीस मिश्कात में है ये भी, 5174, वही जो शुरू में आपको बताई, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, जिसमें सबसे पहले जवानी। लिखिए जवानी। अगर आज आप जवान हैं तो अल्लाह का शुक्र कीजिए। दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में तौबा करना पैगंबरों की आदत होती है। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर होता है। फिर इसी तरह से सेहत को मरज से पहले, अपने मालदार होने को अपनी मोहताजगी से पहले, और अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। कितने लोग चले गए कोरोना में, कितने लोग चले गए कैंसर से, कितने लोग चले गए हादसात में। आवाजें दीजिए, शोर मचाएं, कुरलाएं, वो वापस नहीं आएंगे। तो भाई हम अगर हैं तो रखिए, इस्लाम ने वक्त की अहमियत पर बहुत जोर दिया। वक्त की कदर और मंजिलत जितनी इस्लाम ने सिखाई है, और ये जो 5 नमाजें हैं ना, ये हमारी टाइम मैनेजमेंट है। फजर से जोहर तक क्यों इतना ज्यादा टाइम है? क्योंकि उठे हो, काम करो, और जोहर और असर के बीच में फिर टाइम एक स्लॉट दिया। मुझे तो ऐसे लगता है ये अलार्म क्लॉक लगी हुई है। आज बहुत सारे लोग रिमाइंडर्स देते हैं, अलार्म लगाते हैं, अल्लाह एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का अलार्म लगाकर हमें इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि दिन खत्म होने वाला है, उससे पहले कुछ कर लो। और जो लोग अपनी नमाजों का ख्याल नहीं रखेंगे उनकी बाकी चीजें भी ठीक नहीं होंगी। फिर इसी तरह से जिंदगी को लम्हों में गुजारिए, मिनट्स और सेकेंड्स में गुजारिए। आप देखते हैं कि घड़ी की सुइयां देखें तो मिनट वाली सुई भी होती है, सेकंड वाली भी होती है, दो बड़ी सुइयां होती हैं, एक छोटी सुई भी होती है, और उसको हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। हालांकि वो ना हो तो बड़ी भी ना काम करे। तो अगर आप अपनी जिंदगी सोचिए जरा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरे कहने से होगा नहीं, लेकिन सोचिए कि ये आज का दिन क्या है, इतवार, अगर ये हमारी जिंदगी की आखिरी इतवार हो तो क्या करेंगे? कल मंडे, आखिरी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, यानी हमने अगले सैटरडे को मर जाना है, उस एक हफ्ते को कैसे गुजारेंगे? महीने के आखिर में वो जो नकदी थोड़ी सी बच जाती है, बंदा उसको सेंध सेंध के रखता है ना, कि अब इससे ये लूं कि ये दूं, ये करूं कि वो करूं, जिंदगी को ऐसे रखिए। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आपका बैक ट्रैक शुरू हो चुका है, 50 से ऊपर है तो बिल्कुल आई खड़ी मंजिल, और 60 है तो समझें कि बोनस शुरू हो गया। और इसी तरह से याद रखिए, दुनिया और आखिरत की फलाह और फौज चाहिए आपको मुझे। कुरान ने वक्त की अहमियत और अजमत कैसे बताई? वलअस्रिन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान नुकसान में। और इसी तरह सूरत फजर की पहली आयत, वल फजरी वलयाल नशर, कसम है फजर की और वक्त के जाया करने पे, यानी जिया पर कुरान ने डराया है। कैसे? नंबर नोट कर लें, बाद में जाकर देखिएगा आयत को, सूरत फातिर की आयत नंबर 37। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी कि इसमें जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता वो सोच सकता था? मन तज़क्कर, अगर वाकई सोचना चाहते तो तुम्हें मिल जाता। वह जाकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास तो डराने वाला भी आ गया था। कई लोगों ने आपको तो डराने वाला किसको कहा इस आयत की तफसीर में? सफेद बालों को। और अवलम नुअम्मिरकुम पे उलमा कहते हैं 60 साल। इस आयत पे कुरान में आता है कि 60 साल की जिसको उम्र मिल गई उसका कल उजर नहीं चलेगा, कि तुम्हें 60 साल में भी मौका नहीं मिला मेरा कुरान सीखने का। फजूकू फमा लिज़ालिमीना मिन नसीर, बस चखो अजाब का मजा, क्योंकि जालिमों का आज कोई मददगार नहीं है। हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं, मुसाफिर हैं। हमारे घरों में कोई मेहमान आ जाए, हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसकी खातिर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, हम उसको तकलीफ नहीं होने देते। याद रखिए, हम सब भी मुसाफिर हैं। हजरत इब्ने उमर से एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने इनके कंधे पे हाथ रखा, जैसे बड़ा ही प्यारा अंदाज होता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कलावे में ले लेना, या उसको अपने साथ लेकर कंधे से पकड़कर आपने फरमाया, कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब व आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी या मुसाफिर। आप यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं उमरे के लिए, रास्ते में आपकी दुबई में फ्लाइट रुकती है तो वहां आप कैसे बैठेंगे? फौरन तैयारी, जल्दी करो, कब आए जल्दी से अगली फ्लाइट में बैठूं, तो पाँव मत पसारिए। रैप अप टाइम शुरू हो चुका है हम सबका। शुरू में सफर के दिनों में बंदा सारा सामान खोलता है, बखेरता है, देखूं क्या है, फिर बाद में समेटना शुरू होता है। तो अगर आप 40-50 से ऊपर हैं तो अब समेटने का वक्त है, क्योंकि किसी वक्त ट्रेन आई तो उस वक्त आपको समेटने का मौका नहीं मिले। यहाँ तो हमारे टिकट्स भी बुक होते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, वहां तो हमें पता भी नहीं हमारी टिकट कब की बुक है। आपको किसी ने लेने आना और कोई फोन ना हो, कुछ ना हो, तो हमारे दरवाजे पे आप खड़े होते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो मुझे लेने भी आए कि नहीं है। और फिर आपने फरमाया कि अगर तेरी जिंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, और शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो। हम पहले सोचते हैं रात को क्या पकाएंगे, ठीक है सोच लेना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फिर आपने फरमाया सेहत में बीमारी के लिए, और अपनी हयात से अपनी मौत के लिए तोशा हासिल करो, यानी कुछ ना कुछ सेविंग्स कर लो। तो क्या पता चली बात कि अल्लाह की नेमतें जो उसने अता की उसमें से वक्त है, और क्यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा। सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 2690, इब्ने मसूद इसके रावी हैं। आपने फरमाया क्यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास से उस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक उससे 5 सवाल न कर लिए जाएं। ला तजूल कदमन इब्ने आदम मिन इंदी रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खम्सा। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा फनाहु, कहां उम्र फना की। दूसरा, अन शबाबिही फीमा बला, जवानी कहां पुरानी की। तीसरा सवाल, मिन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम, कमाइयां कहां की थी। और चौथा माल से है, मिनैन अनफकु, खर्च कहाँ किया। ये तो नहीं कि अपनी ख्वाहिशों पे खर्च कर दिया और दूसरों की जरूरत भी ना पूरी की। और माज़ा मिला बिमा अल्लामा, जो इल्म मिला उस पे अमल कितना किया। तो हम सब के दिन गिने गए, तो जो बात किया उसका खुलासा ले लीजिए। दुनिया में वक्त को गनीमत जानिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने में लग जाइए। देखिए ना, मस्तियाँ तो कर ली, मौजें भी कर ली, नफ्स की भी मान ली, मुआशरे की भी मान ली, तो अब अल्लाह की मान ले। इतने गुनाह किए तो दिल नहीं भरा, तो और भी करके क्या दिल भरेगा। इसी तरह जन्नत के मुस्तहिक बनने के लिए तैयारियां करनी है। आपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया और बर्बाद नहीं करना, जहन्नुम के ईंधन बनने का जरिया नहीं बनाना है ज़िंदगी को। और एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, अकेले में कर लें, आपकी मौजूदा उम्र लिखिए, उसके आगे अपनी एवरेज उम्र 63 लिखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत की उम्रें मेरी उम्र के बराबर होंगी, 63 माइनस आपकी मौजूदा उम्र, नीचे जो सम है ना, ये आपके मेरे हाथ में बची खुची पूंजी। ये भी तब है जब पूरा नेचुरल लाइफ स्पैन हासिल करें, यहाँ तो 20-22 साल के बाद नहीं पता किसने रहना है किसने नहीं रहना। तो वक्त की अहमियत और आमाले सालेह की कदर का अंदाज़ा लगाना है तो अल्लाह के नबी की एक रिवायत याद रखिए, मुस्नद अहमद में रिवायत है 12776। आपने फरमाया कि अगर क्यामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के एक हाथ में खजूर का छोटा सा पौधा हो, अगर वो खड़ा होने से पहले इसे लगा सकता है तो ज़रूर लगा ले, क्या पता वो पौधा ही उसके बचने की जरिया बने। और आखिरी बात इसमें क्या है कि हमारे असलाफ छोटी छोटी जिंदगियों में इतने बड़े बड़े काम क्यों कर गए? क्या उनके दिन बड़े थे, उनके रिसोर्सेज ज्यादा थे? ऐसा नहीं है, इसलिए कर गए कि उनके नज़दीक वक्त की बहुत अहमियत थी। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे रुकेंगे कि इमाम राजी जो थे वो अपने वक्त का कैसे इस्तेमाल करते थे। कहते थे कि अल्लाह की कसम मुझको खाने के वक्त इल्मी मशागिल के छूट जाने पर अफसोस होता है, क्योंकि वक्त मताए अजीज है, यानी खाना खाने के दौरान मैं इल्म नहीं हासिल कर पा रहा, इसलिए मुझे अफसोस होता है। और आज के दौर में ज़्यादातर लोगों का वक्त कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारी यूथ कहाँ लगाती है, हमारा मोबाइल फ़ोन हमारे वक्त में कहाँ खलल लाता है, हमारे फुर्सत के औकात क्या सोशल नेटवर्किंग और ऐसी साइट्स को सर्च करने में तो नहीं गुजर जाते जिसमें ना दुनिया का फ़ायदा ना आखरत का फ़ायदा। फिर रात हम देर भर जाकर कर क्या रहे होते हैं उस वक़्त, बेकार किस्म की चीज़ें। याद रखिए कि वक्त गुजारने के लिए नहीं है, ये तो पता लगेगा डेथ बेड पे। और वक्त गुजारने के जितने शैतानी जराए आज आपको दिखते हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वहशत और वीरानी। आज दिल इसलिए खाली है कि हर वक्त एंटरटेनमेंट में लगे, फिकर बिगड़ी, दिल बिगड़ा और इसी के साथ आप देखेंगे कि जिंदगियां बिगड़ गईं। इसके बरक्स जिसकी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजरती है तो उसका दिल दिमाग मुतमईन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या था? सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इंशाल्लाह हमने इससे फ़ायदा उठाना है। बीमारियों के साथ जीने में मज़ा नहीं, दवाइयों के साथ जीने में मज़ा नहीं है, इसी तरह डॉक्टर्स के पास जा जा कर बैठने में इंसान का दिल दिमाग दोनों परेशान होते हैं और वो कोई कॉन्क्रीट काम नहीं कर पाते। और हमने ये दूसरी चीज़ देखी कि आज हम मुसलमानों के अपने मुआशरों में वक्त ज़ाया बहुत होता है, जबकि आप देखिए कि यूरोप का मुआशरा, उसमें बहुत भी खराबियाँ होंगी और ऑफकोर्स हैं, लेकिन वक्त का इस्तेमाल ठीक है, वहाँ आवरली पे मिलती है। मैंने किसी से पूछा ऐसा क्यों है, कहा इसलिए कि वो क्वालिटी का टाइम गुजारते हैं। अब यहाँ आप पर आवर एक पे कर दें तो हो सकता है लोग 2 घंटे का काम 4 घंटे में करें कि ज़्यादा घंटे मिले, तो वो अगर 1 घंटे के पैसे लेते हैं तो उसमें काम भी करते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बड़ी वजह यह है कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। हम इसका हल कुरान से क्या ढूंढते हैं? कुरान पाक फरागत का बेहतरीन हल क्या, यानी फारिग वक्त में क्या करें? दिल नहीं लग रहा, चल फिर ड्रामे ही ला दे कुड़िए। आजकल बूढ़ों का भी बड़ा दिल लगता है ड्रामे देखने में, कौन कौन देखता है वैसे ड्रामे? और वैसे नसीहत के लिए देखते हैं ना, कहानियां बड़ी अच्छी होती हैं। कुरान क्या कहते हैं, फाइजा फरख्ता फनसब वइला रब्बिका फरगब, जब तू फारिग हो जाए तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार की तरफ दिल लगा। तो अमल की क्या बातें हैं, पहली बात जिंदगी से जो फायदा उठाना है उठा लीजिए। आपकी वो चची, खाला, मामी जो दुनिया से जा चुकी है अब वो अपनी जिंदगी से फायदा नहीं उठा पा रही। आज सेहत और तंदुरुस्ती है, कल नामालूम किस बीमारी का शिकार हो जाएं। आज जवानी का सुनहरा दौर मिला हुआ है, कल बुढ़ापे में ना जाने क्या बीमारियां, क्या तकलीफें आ जाएं। और रोजे कयामत हर हर चीज का हिसाब होगा, अपने हर कॉल और फेल का जवाब देना पड़ेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, और एक भूल में मत रहिए। और वो क्या क्या मकसर समझते हैं कि ये नेमतें हमेशा रहेंगी, कभी इन्हें जवाल नहीं आएगा। हालांकि ये बसवसा है, आपके घर में बुजुर्ग हैं, मांत हैं ना सबके घर, आज अपनी अम्मी के चेहरे में अपना मुस्तकबिल का चेहरा ढूंढिएगा। नानी है आपकी, अपनी नानियों को दादियों को देखिए, इंशाल्लाह आपको अपना वक्त याद आएगा। तो अकलमंद वो है जो वक्त का सही इस्तेमाल करे, इन नेमतों को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया की भी ज़िंदगी को अच्छा करे, क्वालिटी लाइफ गुजारिए, कुछ करके जाइए और आखरत को भी। और ज़र्रा बराबर नेकी भी कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि आखरत में उसकी कदर की जाए। अपनी इबादात को, अपने अस्कार को, अपनी तिलावत कुरान फ़राइज़ और वाजिबात को पाबंदी से अदा करें, इससे अल्लाह ताला खुद बहुत बरकत देंगे। जितना आपकी ज़िंदगी से मुनकरात और मनहियात और फजूलियात निकलती जाएंगी, उतना आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, व तूब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.